ओम शांति।
क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन विंग की ट्रेनिंग है और वैसे टॉपिक्स भी हम जान पाए जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर्स को डायरेक्टली हम बता सकें और उसमें अपने ज्ञान को और उनकी भ्रांतियों को हम क्लियर कर सकें, तो इसलिए सॉफ्ट स्किल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ये टॉपिक रखा गया है। जैसे कि आप देखते हैं जब बाबा मुरली चलाते हैं तो बाबा मुरली में अगर ये बता रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है ये सिद्ध करो, तो उसके साथ साथ बाबा हमें ये भी बताते हैं कि दुनिया वाले किस रूप में सर्वव्यापी कहते हैं, या कोई भी ज्ञान की पॉइंट। सत्य ज्ञान बताने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए। अब जैसे सॉफ्ट स्किल्स है, तो सॉफ्ट स्किल्स का मतलब कोई हार्ड स्किल्स भी होंगी, ये तो अंडरस्टूड है। अगर हमें हार्ड स्किल्स नहीं पता और हम सॉफ्ट स्किल्स बताने गए हैं तो क्या होगा? हमारा ही ज्ञान अधूरा है ये सोच करके एक ही प्रश्न सामने से आएगा, और हमें क्योंकि उस बात का ज्ञान नहीं होगा तो आगे का कुछ भी उनके बुद्धि में अभी जाएगा नहीं, क्योंकि वो ये सोच लेंगे इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तो हमेशा जो टॉपिक होता है वो होता है मूल, लेकिन उसके आसपास उससे जुड़ी हुई और भी बातें होती हैं, और भी इंफॉर्मेशन होती है। जो मूल है वो हम बता रहे हैं, लेकिन जो उसके आसपास की जुड़ी हुई चीजें हैं, प्रश्न वहीं से आएगा। प्रश्न वो लोग मूल से नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आप कह सकते हैं यही कवर करने हम आए हैं। तो कभी भी ऑडियंस के प्रश्न जो मूल आपका टॉपिक है ना, उससे नहीं आएंगे। जो आसपास उससे जुड़ी हुई चीजें आप कहेंगे ऐसे करना है, वो बोलेंगे लेकिन ऐसे करेंगे, तो वो आसपास से आसपास के उसकी चीजों से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जब भी हम कोई ट्रेनिंग ले, कोई भी टॉपिक कवर करे, सबसे पहला रूल हमें यह याद रखना चाहिए कि शुरुआत में ही हम दूसरों को ये हिंट दे दें कि आसपास की चीजें भी हमको पता हैं, ताकि उनको हमारे अंदर और हमारे ज्ञान के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए। बाकी तो हम मूल बात पे चर्चा करने ही वाले हैं। तो जब हम इस टॉपिक को लें तो हम उनको सबसे पहले ये बताएं कि दो प्रकार की स्किल्स होती हैं। एक हो गई हार्ड स्किल्स और एक हो जाती है, और हार्ड स्किल्स में कौन कौन सी आती है आप उनसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ। हार्ड स्किल्स में क्या क्या आता है? हाँ जी, आप सोचिए। हम अगर सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे हैं और हम जानते हैं हम कौन सी सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, तो उसका विपरीत हार्ड स्किल्स कौन सी होंगी? सामने वाले की बात को काट देना, ठीक है। और ऑर्डर करना। सारे भाई बोल रहे हैं, क्यों? बहनों में सब में सॉफ्ट स्किल्स है ऐसा? एंगर, ईगो, ठीक। तो अथॉरिटेटिव, ये करना ही है आपको, जैसे अभी बताया ऑर्डर के रूप से बताना। एंगर, कंट्रोल करना दूसरे को, प्रेशराइज, माहौल क्रिएट करना, ये काम इतने समय तक हो जाना चाहिए, ये फाइल मेरे पास इतने बजे तक आ जानी चाहिए, छुट्टी नहीं मिलेगी पहले ये काम, ये सब है प्रेशर क्रिएट करना। एक होता है कंट्रोल, एक होता है प्रेशर। फिर फियर इंड्यूस करना, भय के प्रभाव में लाकर के कार्य कराना। फिर उसके बाद में इंड्यूस करना, इंस्ट्रक्ट करना, ईगो, तो ये सब हार्ड पावर्स होती हैं, और भी इस प्रकार की कई। तो इसमें डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य सेशन का इनको एक्सप्लेन करना नहीं है, लेकिन आप उनको शुरू में ही बता सकते हैं, एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि इनको दूसरा पक्ष भी पता है। यानी कि हमारा जो पक्ष है, जो पक्ष लोग लेके बैठे हैं, उनको ये क्लियर हो जाएगा कि इनको हमारी परिस्थिति भी पता है, अब ये अपनी बात हमें बताने जा रहे हैं। नहीं तो कई बार लोग सोचते हैं ये तो सेंटर पे रहती हैं, इन्हें तो कुछ काम नहीं करना होता, जो लोगों की मान्यता है, उन्हें नहीं पता हम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं और कितना हमारे जीवन में भी चैलेंजेस हैं, ये उनको नहीं पता। उनको लगता है इनको तो बस सेंटर पे रहती हैं, इनको तो बस सेंटर पे जो लोग आते हैं उनको आत्मा परमात्मा बताना है, मेडिटेशन शांति के माहौल में रहती हैं, इनके सामने तो कोई चैलेंजेस आते नहीं, हम कैसे काम करते हैं, हमारे सामने कितना कॉम्पिटिशन है, ये इनको क्या पता। तो जब आप थोड़ा सा उनको हिंट दे देंगे तो वो समझ जाएंगे कि इनको भी इन बातों का पता है। और फिर इसके कॉन्ट्रास्ट में दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल। तो आपकी जानकारी के लिए, कितने लोगों को पता है कि एक प्रोग्राम हम लोग किया करते थे पहले, फ्यूचर ऑफ पावर, कई शहरों में वो हुआ है, किस किस को जानकारी है उस प्रोग्राम की? फ्यूचर ऑफ पावर। फ्यूचर ऑफ पावर का मतलब क्या है कि पावर का भविष्य क्या है, पावर से अपना भविष्य कैसे बनाना है, नहीं, पावर का भविष्य क्या है। इसमें मूल यही बात डिस्कस हुआ करती थी कि पावर का भविष्य क्या है, कौन सी पावर आगे आने वाले भविष्य में जीतेगी, हार्ड पावर, वेपन्स की पावर, पॉलिटिकल पावर या सॉफ्ट पावर। और जितने बुद्धिजीवी लोग, क्योंकि ये बुद्धिजीवों की सभा हुआ करती थी, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे वो सब यही समर्थन दिया करते थे कि अगर लंबे समय तक कोई पावर चल सकती है तो वो सॉफ्ट पावर है, क्योंकि हार्ड पावर तो आपस में ही टकरा करके स्वयं ही स्वयं को नष्ट कर देगी। उस चीज का, हार्ड पावर का स्वभाव ही है नष्ट करना, पहले दूसरों को और फिर जिसने वो पावर दिखाई उसी को नष्ट कर देती है। लेकिन सॉफ्ट पावर का उद्देश्य क्या है, उसका स्वभाव क्या है, आगे बढ़ाना। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मूल क्या है, नष्ट करना या आगे बढ़ाना? तो किस चीज से आगे बढ़ा सकते हैं, सॉफ्ट पावर से ही कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल से ही कर सकते हैं। हार्ड स्किल से आप दूसरे की बुद्धि को नष्ट कर सकते हैं कि अपनी बुद्धि मत चलाओ, मेरी बुद्धि से ही काम करो, लेकिन कब तक? फिर एक दिन आएगा वो अपनी बुद्धि चलाएंगे नहीं, क्योंकि आपने उनको उनकी बुद्धि चलाने की कभी अनुमति दी ही नहीं। और फिर जब एक दिन आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अपनी बुद्धि चलाएं और वो चलाएंगे नहीं, तो आप बोलेंगे बुद्धि कहाँ है आपकी। अब वो ये तो बोल नहीं सकेगा कि आप ही ने मारा है मेरी बुद्धि को। तो इसलिए ये बात हम उनको भी समझाएं अपने तरीके से, अपनी भाषा में, अपने एग्जाम्पल्स दे करके समझाएं, लेकिन हम शुरुआत में उनको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है, दूसरों की सेवा करना, उनको बढ़ाना। तो सेवा करना अगर आपका उद्देश्य है तो उसी चीज को यूज करें जो सबकी सेवा कर सकती है, जो दमन करती है किसी का, उस चीज से आप सेवा कैसे कर सकते हैं। तो हार्ड पावर या हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, इसमें अंतर बताने के लिए आप उनको एक एक्टिविटी भी करा सकते हैं। ये एक्टिविटी में अक्सर करके कई सारे टॉपिक्स में इसको लिंक कर सकते हैं, शायद कईयों ने की भी हो। तो आप जहां भी बैठे हैं अपना एक पार्टनर चूज कर लीजिए, बैठे बैठे अपना एक पार्टनर चूज कर लीजिए और अपने पार्टनर का एक बारी हाथ पकड़ के दिखाइए, ये मेरा पार्टनर है। आपको थोड़ा अपने पार्टनर के समीप बैठना पड़ेगा, ठीक है। हर कोई अपना एक पार्टनर चूज कर लीजिए, ठीक है, ओके। अभी क्या करना है, आप में से एक व्यक्ति चुनेगा जो मुट्ठी बंद करेगा अपनी, एक हाथ की मुट्ठी बंद करेगा और दूसरे व्यक्ति को मुट्ठी खोलनी है, ठीक है। कुछ लोगों ने किया होगा ये एक्टिविटी शायद, जिन्होंने पहले भी ट्रेनिंग की है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं भी की होगी। तो मुट्ठी कस के बंद करनी है, जिसने मुट्ठी बंद की एक बार दिखाएंगे ऊपर अपनी मुट्ठी, कस के बंद करनी है, दूसरे व्यक्ति को मुट्ठी खोलनी है और आपके पास 10 सेकेंड है, आपका समय शुरू होता है अब। नहीं, दोनों हाथ भी, मुट्ठी खोलने वाला दोनों हाथ लगा सकता है, मुट्ठी बंद करने वाले को एक ही हाथ से बंद करनी, एक ही हाथ की बंद करनी है। ओ बाप रे, बस किसी का हाथ किसी की उंगली टूट ना जाए। हमारा दैवी परिवार है, ठीक है, अच्छा किस किस की मुट्ठी खुल गई, किस किस ने मुट्ठी खोल दी वो हाथ खड़ा करें, ठीक है। किस किस ने मुट्ठी अभी तक खोल नहीं पाए वो हाथ खड़ा करें, अच्छा किस किस ने मुट्ठी खोलने के लिए प्रेशर लगाया वो हाथ खड़ा करें, और किस किस की मुट्ठी आसानी से खुल गई वो हाथ खड़ा करें, ठीक है। और किस किस ने ये एक्टिविटी पहले कर रखी थी वो हाथ खड़ा करें, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जिसने मुट्ठी बंद की थी, क्या मैंने आपको ये कहा कि आपको मुट्ठी खुलने नहीं देनी? मैंने इतना कहा कि आपको मुट्ठी बंद करनी है, दूसरे वाले को खोलनी है, लेकिन जब वो खोले तो आपको खुलने नहीं देनी, ये कहा था। लेकिन अगर किसी ने हमारी मुट्ठी खोलने के लिए प्रेशर लगाया, इसका मतलब हमने जरूर उसको खोलने नहीं दिया। इसका मतलब ये बात हमने अज्यूम कर ली कि मुझे अपनी मुट्ठी खुलने नहीं देनी, ये तो कहा ही नहीं था, वो समझ लिया ना, अजम्पशन। हाँ, तो ये दुनिया भी कहावत है, इसी चीज को हमें उन्हें ज्ञान के आधार पर समझाना है। अब होता क्या है, ये हार्ड पावर का प्रदर्शन था, जोर जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने अपने आप समझ लिया कि हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर वो खोल पाया तो उसकी जीत, और उसकी जीत मतलब ऑटोमेटिकली मेरी हार, जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर सामने वाला जीत गया, वो आगे निकल गया, तो मतलब मैं हार गया। इसलिए हम खुद को हराना नहीं चाहते तो दूसरे को जीतने भी नहीं देंगे। अब देखिए, जब सामने वाला पहले ही प्रेशर से अटैक करता है तो आप डिफेंस मोड में आकर के और अपनी शक्ति लगाते हैं। अगर सामने वाले ने शक्ति नहीं लगाई होती तो आप भी अपनी शक्ति नहीं लगाते, या जितना वो शक्ति लगा रहे हैं उतनी ही आप भी शक्ति लगा रहे हैं। तो हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होगा, उतना ही ऑपोजिट रिएक्शन होगा। ये वैसे भी फिजिक्स का लॉ कहा जाता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हम ये ना समझे एडमिनिस्ट्रेशन में कि सारी हार्ड पावर हमारे पास ही है, सारी हार्ड स्किल्स हमारे पास ही है। भले ही हम अथॉरिटी पर हैं, सीट पर हैं, हम दिखा सकते हैं, दूसरा वाला प्रत्यक्ष रूप से अपनी हार्ड पावर नहीं लगाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ करके वो भी अगर अपने पे आ जाए तो वो भी अपने आप को सिद्ध करने के लिए नुकसान करने की मंशा रख सकता है। तो हम ऐसा ना सोचें कि सारा जोर हम ही लगा सकते हैं। तो कई लोग ऐसा सोचते बैठे होंगे, जो ये सोच रहे होंगे कि सॉफ्ट स्किल से एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकता, वो समय नहीं है, वो जमाना नहीं है, प्यार से लोग बात नहीं मानते। लेकिन जबरदस्ती से अपनी बात मनवाना में कितना समय लगता है, कितनी शक्ति चली जाती है। और अगर छोटी छोटी बातों में हम इतनी शक्ति लगा रहे हैं तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम खुशहाल घर वापस जाएंगे, हम थकेंगे नहीं, जीवन से नहीं थकेंगे, लोगों से नहीं थकेंगे, अपने आप से नहीं थकेंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अपनी शक्ति हम ही तो खो रहे हैं ना छोटी छोटी बातों में। ये शक्ति तो हमको बचा के रखनी चाहिए जब कोई चैलेंज आए वहां लगाने के लिए, और वो भी इस रूप से नहीं, लेकिन अपने संयम के रूप से, मोटिवेशन के रूप से। लेकिन वो शक्ति तो हमने पहले गंवा दी। अब इसी एक्टिविटी को हम सॉफ्ट स्किल्स के द्वारा करेंगे और फिर देखेंगे कितना आसान है। हार्ड पावर का तो एक ही तरीका है जो अभी हमने किया, लेकिन सॉफ्ट पावर और कितने तरीकों से काम कर सकती है, उसमें ज्यादा ऑप्शंस हैं, ये अभी हम करके देखेंगे। तो एक बार फिर से जिसने मुट्ठी बंद की थी वो मुट्ठी बंद करेंगे, और दूसरे वाले अभी जिसको मुट्ठी खोलनी है वो खोलेंगे, लेकिन टच नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाइए उनको, सिर्फ उनको देखिए, प्यार से देखिए, मुस्कुराइए, पूछिए क्या छुपाया हुआ है, क्या छुपा रहे हो मुझसे, क्या उत्तर मिला? वो बोलेंगे कुछ नहीं, कुछ तो छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो दिखाओ, खुल गई मुट्ठी, खुल गई, किस किस की खुल गई, हाँ खुल गई। तो पहला सॉफ्ट स्किल जो हमने यहां अप्लाई की वो है कम्युनिकेशन, बातचीत, रिक्वेस्ट। चलिए आप कहें हम रिक्वेस्ट नहीं करते, कम्युनिकेशन हम नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका अपनाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका अपनाएंगे, फिर से एक बार मुट्ठी बंद करेंगे। देखिए बिना शक्ति के कम समय मुट्ठी खुल गई थी ना, अभी दूसरा तरीका अपनाएंगे, फिर से मुट्ठी बंद करेंगे। जिसने मुट्ठी बंद किए दिखाए, ठीक है, अभी दूसरा व्यक्ति, हाँ उसको देखेंगे, मुस्कुराएंगे, टच नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं लगाना, बोलना भी कुछ नहीं है, ठीक है, बस मुस्कुरा करके फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा दीजिए। मुट्ठी खुल गई, मुट्ठी खुल गई, एक सेकंड लगा, एक सेकंड लगा और मुट्ठी खुल गई। इसको कहते हैं इनिशिएटिव लेना, इनिशिएटिव, आपने पहल की। जो बाबा भी कहते ना, पहले मैं करो, पहले अपने आप को ऑफर करो, चांस लेने वाला चांसलर बन जाता है। तो ये है दूसरी सॉफ्ट स्किल, प्यार से इनिशिएटिव लेना। और जो आगे बढ़ने का पहला कदम उठाता है आगे वही रहता है। लीडर का मतलब ही है इनिशिएटिव लेने वाला, और एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होते हैं, लीडर। तो आप दूसरे के बदलने का कैसे इंतजार कर सकते हैं, फिर तो वो लीडर हो गया, फिर तो आप उसको फॉलो करने वाले हो गए, फिर आप कहां रहे एडमिनिस्ट्रेटर। अब तीसरा भी देखते हैं तरीका, एक बार फिर मुट्ठी बंद कीजिए, उनको मनवा के ही छोड़ना है, वो खुद ही कहेंगे हाँ बहन जी सॉफ्ट स्किल भी ठीक है, ठीक है। तो फिर से मुट्ठी, जिसने बंद की दिखाएं एक बार फिर से मुट्ठी, सबको करना है। अभी जिसको मुट्ठी खोलनी है आपको उनको टच भी नहीं करना, बोलना भी नहीं है, ठीक है, दोस्ती का भी हाथ आप लगते हर बार हम ही दो, हम इनिशिएटिव क्यों लें। अब आप उनको कोई चीज पकड़ाइए, क्या हुआ, क्या हुआ, लेने के लिए खुल गई ना। तो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब, दीदी ने सुबह भी कहा आशा दीदी ने, दाता, देने वाला। दुनिया ने इसको यूज किया, लेकिन कैसे यूज किया, करप्शन के रूप से यूज किया, ब्राइबरी कि कुछ लालच दो तो वो काम करेगा, मुट्ठी खोलेगा, लालच नहीं देना, लेकिन उसके काम की जो उस आत्मा की जरूरत है, उसको उस कार्य में अपनी उन्नति लगे तब तो वो कार्य करेगा ना। आप दाता है, एडमिनिस्ट्रेटर दाता है, देने वाला है, आप उनसे सिर्फ काम निकलवा रहे हैं या उस कार्य के जरिए उनको भी कुछ लाभ मिल रहा है, उनका भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, उनको भी प्रशंसा मिल रही है, उनको भी और आगे बढ़ने की महसूसता हो रही है। जैसे डॉक्टर गिरीश पटेल ने बताया कि एक बहन के पास फौज है पूरी और दूसरी बहन के पास कोई टिकता नहीं, क्यों, क्योंकि इनके पास सबको अपनी उन्नति महसूस होती है, यहां रहेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ाने वाले के पास हमेशा लोग रहेंगे क्योंकि वो सबको मौका दे रहा है। इसलिए देने वाला ही हमेशा, दाता ही हमेशा बड़ा होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार एक राजा था, उस राजा ने एक बार अपने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि इस तिथि पर इस मुहूर्त में मैं अपने द्वार, अपने महल का एक द्वार खोल दूंगा, जिसको भी मेरे महल से आकर के जो कुछ भी लेना है वो लेके जा सकते हैं। तो लाइन लग गई मुहूर्त शुरू होने से पहले ही प्रजा वालों की, एक एक करके लोग अंदर आ रहे थे और कुछ ना कुछ लेकर के जा रहे थे, बड़े खुश थे, बड़ा राजा की महिमा कर रहे थे, वहां राजा तो दानवीर है, ऐसा राजा सबको मिले, इस राजा, राजा अमर हो जाए, राजा का राज्य पूरे विश्व में हो जाए, बहुत दुआएं देके जा रहे थे। उस लाइन में एक फकीर भी लगा हुआ था, वो फकीर जैसे ही उस फकीर का नंबर आया, वो फकीर लाइन छोड़ करके फिर से पीछे चला गया, लाइन के लास्ट में चला गया। कोई बात नहीं, चलता क्या, फिर लाइन खिसकते खिसकते फकीर लास्ट में लगा था, पर फिर से उसका नंबर आगे आ गया। जैसे ही नंबर आगे आया वो फिर हट करके लाइन से पीछे चला गया। तीन चार बार जब उसने ये किया तो लोगों ने देखा ये बड़ा विचित्र फकीर है, लाइन में भी लग रहा है और ले भी कुछ नहीं रहा। जैसे ही उसका नंबर आता है फिर से पीछे लग जाता है। तो धीरे धीरे करके राजा की महिमा हो रही थी क्योंकि वो दे रहा था, लेकिन अब इस फकीर के बिहेवियर को देख करके सुर्खियों में कौन आने लग गया? फकीर। तो चर्चा किसकी होने लग गई? सबके जुबा पे यही था कि ये फकीर कैसा है, ये कहां से आया, ये ऐसा क्यों कर रहा है। ये खबर राजा के कान तक भी पहुंची। उनके वजीरों ने जाकर के कहा कि राजा, राजन दान तो आप दे रहे हैं लेकिन नाम और चर्चा फकीर की हो रही है। तो राजा ने कहा ये तो गलत बात है, मेरी चर्चा होनी चाहिए। तो उस फकीर को बुलाया गया, बोला कि भाई अगर आपको महाराज अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, आप लाइन में ना लगिए, अपनी कुटीर में जाइए, कुछ चाहिए तो जब आपका नंबर आए तो लेके चले जाइए, ये बार बार आप क्या कर रहे हैं। तो फकीर कहता है राजन आप तो श्रेष्ठ हैं, आपके पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, ये मुहूर्त दान का है, आप इस मुहूर्त में दान देकर के अपना पुण्य कमा रहे हैं, ये मुहूर्त मेरे लिए भी दान का है। मैं ठहरा फकीर, मेरे पास क्या है देने के लिए, मेरे पास देने के लिए मेरा एक मौका ही है, वही मैं दे करके मैं भी पुण्य कमा रहा हूं। तो चर्चा किसका होने लग गया, दान बड़ा हो या दान छोटा हो, दान दान होता है। अगर आप वो दान, समय का दान, अटेंशन का ध्यान दान, कोई भी प्रकार का दान अगर आप दे रहे हैं, और अगर उस दान की, जैसे हम बताते ना दान और पुण्य में अंतर, तो जो हमने अभी दिया, मेरे पास बहुत पड़ा है थोड़ा सा दे दिया, उसका गायन नहीं होगा। मेरे पास बहुत पैसा है तो पैसा है थोड़ा रिश्वत में दे दिया, ये दान दान नहीं है। लेकिन उस आत्मा को जिस चीज की जरूरत है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक लीडर की तरह मैं हर आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए वो दूं, तब जाकर के हम लीडर हैं, तब जाकर के हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तब जाकर के लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारे पास आएंगे, हमारे साथ काम करना चाहेंगे, हमारे लिए काम करना चाहेंगे, क्योंकि उनको प्राप्ति हो रही है। कुछ मिलना और कुछ प्राप्ति होना, इसमें अंतर है। ओम शांति। तो इस तरह से हम उनको हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का अंतर पहले महसूस करवाएं, और सॉफ्ट स्किल से काम और बेहतर हो सकता है। हार्ड स्किल में तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन सॉफ्ट स्किल में तो तीन ऑप्शन हमने अभी देख लिए, और भी निकल सकते हैं, और उससे हमें क्या फायदा है, दूसरों को क्या फायदा है। जब उनको ये अंतर समझ में आएगा फिर हम उनको बताएं कि ये हार्ड स्किल यूज करनी है या सॉफ्ट स्किल यूज करनी है, ये कहाँ डिसाइड हो रहा है। ये डिसाइड हो रहा है हमारे मन में, बिलीफ सिस्टम में। तो सबसे पहला परिवर्तन स्किल्स में आए उसके पहले हमारे मन में आना चाहिए, हमारी बिलीफ सिस्टम में आना चाहिए। तो वो क्या परिवर्तन हो सकता है, तो हमें हार्ड पावर से सॉफ्ट पावर में शिफ्ट करना है। हार्ड पावर क्या कहती है, बस मैं ही राइट हूं, बाकी सब रॉन्ग है, मेरे तरीके से ही काम हो। और सॉफ्ट पावर क्या कहती है, हम एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, मेरी हार तो आपकी जीत, आपकी हार मेरी जीत, ऐसा नहीं, मैं सही तो आप गलत, आप सही सिद्ध हो गए तो मैं अपने आप गलत सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं, हम मिल करके काम करें। तो सबसे पहले शिफ्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स टू पीपल, लोगों को काम निकलवाने वाली वस्तु नहीं समझनी। हम आजकल क्या करते हैं, वस्तुओं से प्यार करते हैं और लोगों को यूज करते हैं। होना क्या चाहिए, वस्तु बनी है यूज करने के लिए, मनुष्य बने हैं प्रेम से बात व्यवहार करने के लिए। हम वस्तुओं से बड़ा प्रेम करते हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरी चीज, और मनुष्यों को यूज करने की प्रवृत्ति हमारी हो गई है. तो ऑब्जेक्ट्स आर टू बी यूज्ड, पीपल आर टू बी लव्ड. उस सिद्धांत को वापस लाए. हार्ड पावर क्या कहती है? लोगों को रिसोर्सेज ऑब्जेक्ट की तरह पे ट्रीट करो, अपना काम निकलवाओ और चलते बनो. लेकिन सॉफ्ट पावर क्या कहती है? लोग मेरे रियल एसेट हैं, ये मेरे साथ होने चाहिए. कोरोना काल में हमने देखा लाखों रुपए अलग एक तरफ और एक संबंध, जिनके पास संबंध अच्छे थे उनको हर प्रकार का सहयोग मिल गया, समय पर सब सहयोग मिल गया. नहीं तो लोग पैसे दे करके भी, पैसे लुटा करके भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले पा रहे थे. लेकिन जहां संबंध अच्छे थे वहां पे कितनी संबंधों के आधार पे मदद हो गई. संबंध अंत तक रहेंगे, वस्तुएं तो आएंगी जाएंगी, सफलता तो आएगी जाएगी, सफलता लाने वाले लोग आपसे दूर नहीं होने चाहिए. तो रिजल्ट क्या है? जब हम ऑब्जेक्ट समझते हैं हमारा कनेक्ट लोगों से पुअर होता है, रिस्पेक्ट हमारे प्रति लोगों की खत्म होती है और हमारे वर्कप्लेस का एनवायरनमेंट. एक बार हमने किसी के साथ ऐसा किया, दो बार किया, चलिए 10 लोगों से हमने ऐसे काम निकलवा लिया, लेकिन वो आवाज फैल जाएगी ये तो ऐसा ही करते हैं. 11वां व्यक्ति आपके पास ऑब्जेक्ट बन के भी नहीं आएगा, आप यूज ही नहीं कर सकते उसको. थोड़े समय में वो हमारा जो संस्कार है वो सबके सामने आ जाएगा. और सॉफ्ट पावर का रिजल्ट क्या है? सॉफ्ट स्किल्स का रिजल्ट क्या है? हम लोगों के दिल में जगह बना पाते हैं, दिल से वो हमको अप्रिशिएट करते हैं. हमारे साथ अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो भी महसूस करते हैं. जब हमने उनकी मदद की तो वो भी मदद के लिए हमारे सामने आते हैं. ऐसे ही तो ओवरऑल इट स्टार्ट्स विद शिफ्ट ऑफ विजन. हमारी दृष्टिकोण परिवर्तन पहले होना चाहिए, फिर हमारे उसके बाद में एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स जो हैं वो अपने आप कम होते हैं. ऐसे ही दूसरा शिफ्ट, कंट्रोल की जगह हम इन्फ्लुएंस करें. अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार कार्य करें तो हमारे अनुसार कार्य करने से क्या लाभ है वो पहले हम उनको दिखाएं, उनको प्रेरित करें, ना कि ये कि उनको कंट्रोल करें. उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये करने से फायदा क्या होगा, तो पहले हम उनको वो लाभ बताएं, इन्फ्लुएंस करें. जैसे बाबा मम्मा क्या करते थे, कोई काम अगर यज्ञ में बड़ी सेवा करनी होती थी तो पहले खुद लग जाते थे. अरे बाबा मम्मा सेवा कर रहे हैं तो सारे साथ लग, किसी को कहना नहीं पड़ता था. तो वही रीति हम अपनाएं. आप देखेंगे कोई ऐसा सेशन होगा, प्रोग्राम होगा, जिसमें अगर वो लीडर खुद आकर के बैठेगा अटेंड करने के लिए तो सब आकर के बैठ जाएंगे. और ऐसे वो मेल करता रहे और तो लोग बोलेंगे ठीक है टाइम होगा तो चले जाएंगे. तो हमें कंट्रोल नहीं करना, हमें इन्फ्लुएंस करना है. तो हार्ड पावर क्या कहती है? कंट्रोल करना है. जो हमारे कंट्रोल में नहीं भी है, दूसरे लोगों के स्वभाव, वो भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. लेकिन सॉफ्ट पावर वो उनको डेवलप करती है और उनके अंदर भी वही स्किल्स आए जो हमारे अंदर है, इसके लिए उन्हें प्रेरित करती है. और हमारी मेंटल वोकैबुलरी क्या हो जाती है जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं? उनको ये करना चाहिए, दे शुड, दे मस्ट, दे हैव टू. हमारी भाषा भी वैसी हो जाती है. और जब हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो हम पहला कदम हम लेते हैं तो दूसरे के ऊपर प्रेशर नहीं होता. फिर हमें लगता है, वी फील दैट वी हैव मेड देम व्हाट दे आर. हमने उनको ऐसा बनाया है, आज वो जो कुछ भी है वो हमारे कारण है, तो मेरा उन पर अधिकार है. ये हार्ड स्किल, हार्ड पावर, क्योंकि हम सोचते हैं हमने उन्हें कंट्रोल कर लिया. लेकिन इन्फ्लुएंस करने वाला क्या सोचता है? हर एक का हिसाब किताब उसका अपना है. तो सेकेंड स्टेप जो होता है इन्फ्लुएंस में, कि एक्ट मीनिंगफुली. आप अपने कर्म जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे. और रिजल्ट क्या है? कंट्रोल में एक दो बार के बाद वो उसके आदी हो जाएंगे. जैसे ऑल आउट होता है ना, एक दो बार मच्छर को भगाता है, उसके बाद क्या होता है? मच्छर आदी हो जाते हैं, वो उसी के आसपास आके घूमते रहेंगे. तो जो कंट्रोल करने की प्रवृत्ति वाला है, जो भय दिखा करके कर्म करवा रहा है, कुछ समय तक तो वो सफल होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद लोग अपने आप समझ जाते हैं और फिर उतना ही काम निकलवाने के लिए ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उतने डोज के तो वो आधे हो चुके हैं। तो इसलिए वो हमें सुनना बंद कर देते हैं। और इन्फ्लुएंस में क्या होता है, वो दे डू व्हाट वी वांट देम टू डू विदाउट कंट्रोलिंग देम। सभी एक एक्टिविटी करते हैं, अपने दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, मैं 5 तक काउंट करूंगी, जैसे ही मैं 5 बोलती हूं, मेरे 5 बोलते ही सब लोगों को क्लैप करना है। कैसे करेंगे, कब करेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने 5 को बोला लेकिन आपने 4 के बाद क्लैप क्यों कर दिया, क्यों किया? इन्फ्लुएंस। हम जो देखते हैं वो कर्म ज्यादा करते हैं, वो चांसेस रिपीट करने के ज्यादा होते हैं, जो हम सुनते हैं वो बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम इंस्ट्रक्शंस कैसे दे रहे हैं, बोलकर। ज्यादा समय तक वो लोग याद नहीं रखेंगे, लेकिन जब हम करके बताते हैं तो देखी हुई चीज का प्रभाव ज्यादा पड़ता है ना। मैंने आपको बता के, बोल के बताया कि आपको क्लब कब क्लैप करना है, आपसे सुना भी कि आपने ठीक समझा कि नहीं, आपने भी कहा 5 पर क्लैप करेंगे, यानी कि आपने ठीक समझा, लेकिन मेरे इन्फ्लुएंस में आकर के, क्योंकि आपने जो सुना उससे ज्यादा प्रभाव जो आपने देखा उसका पड़ता है। साइंटिफिकली भी हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, 90% ब्रेन सेल्स जो हमारे हैं वो आंखों से कनेक्टेड हैं। बाकी सारी कर्म इंद्रियों का मिला जुला कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 10% है। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा धोखा देने वाली साइंटिफिक है। जो देख ली ना चीज हमने, वो हम देर में भूलेंगे, सुनी हुई चीज तो अगले क्षण भूल जाएंगे। सुबह बाबा ने मुरली में क्या कहा था मीठे बच्चे, कितने कम लोगों को याद है। सुनी हुई चीज बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, लेकिन 1 घंटा मुरली सुनी, पूरी मुरली रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन 3 घंटा किसी को मूवी दिखा दीजिए, है ना। तो इसलिए कंट्रोल नहीं करना, अब खुद वो कर्म करके इन्फ्लुएंस, ये बहुत आसान तरीका है कर्म करने का और करवाने का। फिर शिफ्ट करना है रेजिस्टेंस से एक्सेप्टेंस। हम लोगों को रेजिस्ट करते हैं, सिचुएशंस को रेजिस्ट करते हैं, ये व्यक्ति मेरे पास आए ही ना, ये सिचुएशन, ये काम, ये जिम्मेवारी मेरे पास आए ही ना, कोई और क्यों नहीं कर लेता, ये रेजिस्टेंस वाला हो गया। और उस रेजिस्टेंस के लिए हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, 10 काम हमने जो किए वो गिना देंगे, 2 काम जो उसने नहीं किया वो गिना देंगे, सारा दिन हम क्या करते हैं वो गिना देंगे, सारा दिन वो क्या करते हैं वो गिना देंगे। ये सब तरीके किस चीज के हैं, रेजिस्टेंस के हैं। तो रेजिस्टेंस हार्ड पावर, मतलब रेजिस्ट इज द वे टू चेंज। अगर हमें कुछ बदलना है तो उसको बदलो, जो है वो जैसा है उसको स्वीकार नहीं करो, उसको बदलो। लेकिन एक्सेप्टेंस क्या कहती है, एक्सेप्टेंस इसका उल्टा है। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट इन्फ्लुएंसिंग स्किल। अगर किसी को बदलना है तो पहले उसे एक्सेप्ट करो। अभी जैसे मान लीजिए आप किसी बाहर किसी जगह पे जाएं और बाहर किसी हॉल में आप जाएं, आप बोले ये दीवार का रंग ठीक नहीं है, ये पर्दे कैसे लगा रखे हैं, ये सीट कवर कैसे हैं, आपके कहने से वो बदले जाएंगे, क्योंकि वो आपका नहीं है ना। यही आप अपने सेंटर पे सोचे ये दीवार का कलर ठीक नहीं है, ये पर्दे इस बार दिवाली पे चेंज कर देते हैं, ये गद्दियों के कवर चेंज कर देते हैं, तो आपका सेंटर है क्योंकि आपने उसको स्वीकारा है, तो आपको उसको बदलने का अधिकार भी है। तो किसी चीज को बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, उसको वो जो है जैसा है वैसा स्वीकार करना। बाबा के भी कहने पर हम क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हमको पहले बाबा से ये महसूस होता है कि बाबा ने मुझे, मैं जो हूं जैसी हूं स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान ने मुझे इतनी गलतियों के साथ स्वीकार किया तो मैं उसके लिए क्यों ना बदलूं। हम किसी को स्वीकार ही नहीं करेंगे, रिजेक्ट ही करते जाएंगे तो वो मेरे लिए क्यों बदलेगा। उसको लगेगा क्या गारंटी, मैं बदल भी जाऊं तो भी ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं इनके लिए बदलूं ही क्यों। इसलिए किसी को अगर मुझे इन्फ्लुएंस करना है, परिवर्तन करना है, तो पहला कदम क्या है, वो जो है जैसा है उसको स्वीकार। हमारे साथ जो भी बहनें रहती हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो जो है जैसे हैं उनका ड्रामा में पार्ट है। पहले एक्सेप्ट करना है, पहले स्नेह देना है। ज्ञान का असर पीछे होगा, ज्ञान से उनके अंदर जो परिवर्तन, पहले परिवर्तन स्नेह से आएगा, फिर ज्ञान का रोल क्या है, उस परिवर्तन को परमानेंट कर देगा ज्ञान। सिर्फ ज्ञान से परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन स्नेह से होगा और ज्ञान उस स्नेह के परिवर्तन को फिर परमानेंट करेगा। यही चीज हमें दुनिया को बतानी है। फिर रेजिस्टेंस पास्ट पे फोकस करता है, पहले भी इसने ऐसा किया था, अब भी ऐसा करेगा, इसको रोको। वो व्यक्ति को उसके पास से हम जुदा नहीं कर पाते। और एक्सेप्टेंस क्या करता है, प्रेजेंट फ्यूचर उस पे फोकस करता है कि नहीं, आगे भविष्य में ये परिवर्तन जरूर होगा, एक दिन इसको समझ में जरूर आएगा, एक दिन ये सहयोगी जरूर बनेगा, बनेगी। रेजिस्टेंस क्या कहती है, रेजिस्टेंस इज द रिजल्ट ऑफ ईगो। जहां रेजिस्टेंस है जरूर वहां ये मन में महीन संकल्प है कि मैं सही हूं, इसलिए मुझे अपने आप को बदलना नहीं है क्योंकि मैं सही हूं। तो ये ईगो का रिजल्ट है रेजिस्टेंस। और एक्सेप्टेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बात सही है इसलिए मैंने आपको स्वीकारा है। आपकी बात सही हो ना हो, आप में कुछ गुण ऐसे हैं जो अच्छे हैं, उसलिए मैं आपको स्वीकार करती हूं। जो हम कहते हैं ना, रोल को नहीं देखो, सोल को देखो। रोल कॉन्शियस नहीं होना है, सोल कॉन्शियस होना है। आज वो आत्मा ठीक नहीं है, जैसे बाबा तो देखिए, बाबा तो बिच्छू से भी गुण उठा लेते हैं, सर्प से भी गुण उठा लेते हैं, चूहे की भी बाबा विशेषता बता देते हैं, भ्रमरी की भी बता देते हैं। बाबा किसी को रिजेक्ट नहीं करते, तो हम बाबा के बच्चे भी कोई ना कोई तरीका, वो जो कर्म कर रहा है वो सही नहीं है, लेकिन वो आत्मा तो शुद्ध पवित्र है ना, उसको रियलाइज कराना है कि वो शुद्ध पवित्र है, उसके लिए उसको आत्मिक रूप से एक्सेप्ट करना है। तो सारा कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, रेजिस्टेंस के कारण, मैं और मेरा। और एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, लाइफ बिगिंस ओनली व्हेन वी रियलाइज दैट एक्सेप्टेंस इज द ओनली वे टू रिलेट। सब चीजों से, सब चीज मेरी है, तभी हर एक के साथ हम लाइफ का सफर साथ में कर सकते हैं। फिर दूसरी हार्ट पावर, हार्ट स्किल कौन सी है, टेलिंग। हम किसी को बोलते हैं आपको ये करना है, उसका सॉफ्ट स्किल कैसे हो सकती है, क्या आप ये कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने भाषा चेंज की, थोड़ा सा अपने हमने मन की वृत्ति चेंज की, इंटेंशन चेंज किया, आपको ये करना ही है, नहीं क्या आपसे कर, आप अगर आपने बोल दिया आपको ये करना ही है, दो तीन चीजें हो सकती है, आपके सामने वो हाँ बोल के चला जाए और बाद में वो करे ना, और आपके डर के कारण से वो आपके पास आके बोलेगा भी नहीं कि मुझसे हो नहीं रहा। दूसरा मुंह पे बोल देगा मैं नहीं करती, क्या कर लोगे, है ना। लेकिन आप जब उनसे पूछते हैं क्या आप ये कर सकते हैं, तो या तो वो बोलेंगे हाँ क्यों नहीं, या वो बोलेंगी नहीं इस कारण से नहीं कर सकते। आप उनको मौका तो दीजिए अपनी बात रखने का, हाँ बोले तो भी ठीक, अगर ना बोले तो भी कल्याण है, ताकि आप उनसे पूछ सकते हैं क्यों नहीं कर सकते, क्या समस्या है। अगर आपने बस बोल दिया तो आपको पता ही नहीं कि उनके मन में हाँ है या ना है, काम हुआ तो भगवान भरोसे, नहीं हुआ तो एंड मोमेंट पे आके बोल देंगे लो नहीं करते, अब आप कहां जाएंगे। अगर पहले ही वो ये बोल देती नहीं कर सकते, तो तो आप समाधान कर सकते थे, उस समय तो आपके पास समय था, एंड मोमेंट तो आपके पास समय भी नहीं है अंत में। इसलिए टेलिंग की जगह पर आस्किंग, टेलिंग, यू कैनॉट हैव पावर ओवर एक्शन बट यू कैन हैव पावर, सॉरी, यू कैनॉट हैव पावर ओवर अदर्स बट यू कैन हैव पावर विद अदर्स। उनके साथ आप शक्तिशाली ज्यादा बनेंगे। उनके ऊपर शक्ति लगाने का मतलब आपकी शक्ति ए, उनकी शक्ति बी, तो इफेक्टिव शक्ति कितनी आएगी, ए माइनस बी, क्योंकि उनकी शक्ति को आप रेजिस्ट कर रहे हैं, उनकी शक्ति को दबा रहे हैं, अपनी शक्ति लगा रहे हैं। तो जितनी शक्ति आप में ज्यादा है उतनी ही इफेक्टिव शक्ति लग पाएगी, ए माइनस बी, लेकिन पावर विद अदर्स में ए प्लस बी, दोनों की शक्ति मिलकर के आप कार्य कर सकते हैं। तो हार्ड पावर का मतलब होता है टेलिंग टेलिंग टेलिंग, और आप डिक्टेटर बन जाते हैं, बोलेंगे तो हिटलर है दीदी, तो हिटलर है, ये तो किसी की सुनती नहीं है। तो आपके पास लोग आकर के अच्छी बात भी सुनाए डरेंगे, अपनी कमजोरी भी लेकर के आने से डरेंगे, क्योंकि सुनने का स्वभाव नहीं है ना, बताने का स्वभाव है। फिर सॉफ्ट पावर का मतलब है, हाँ, ये एक इंटेलिजेंट आर्ट है आस्किंग, पूछ पूछ करके आप उनके अंदर से बहुत कुछ निकलवा सकते हैं। ऐसे वो नहीं बताएंगे, डरेंगे, लेकिन पूछ पूछ करके आप उनके अंदर से जो रियल उनकी प्रॉब्लम है, जो रियल उनका संस्कार है, वो आप निकलवा सकते हैं और फिर उसका समाधान कर सकते हैं, तब ए प्लस बी पावर होगी। टेलिंग इज द फोर्स जिसके द्वारा आप इम्पोज करते हैं, ऑर्डर करते हैं, ये करना ही है, डिमांड करते हैं, उसके अंदर शक्ति हो डिमांड पूरी करने की या ना हो। और आस्किंग में क्या होता है, आस्किंग में आप उनको एम्पावर करते हैं, आप उनको इनवाइट करते हैं कि मैं आपसे पूछ रही हूं, यानी कि मैं आपको महत्व देती हूं, आपके विचारों को मैं महत्व देती हूं, क्या पता आपको उनके विचारों में से कोई एक नया आइडिया निकल आए जो आपके मन में आया ही नहीं था। आप पूछेंगे ही नहीं तो उनके मन के आइडियाज भी उनके मन में ही रहेंगे। तो पूछने से आप सामने वाले को जताते हैं कि आप वैल्यूएबल हो, तो उसको मोटिवेशन मिलता है, फिर उस मोटिवेशन से वो जब काम करेगा तो सिर्फ हाथ और दिमाग नहीं लग रहा, दिल भी लग रहा है। आपने बोल दिया केवल ये काम होना है तो बस हाथ और दिमाग लगेगा, बुद्धि लगेगी, वो भी चतुराई वाली बुद्धि, कैसे करके इस काम को पूरा करें। लेकिन जब आप उसको वैल्यू देते हैं तो उसका हाथ और दिमाग के साथ उसका दिल भी लगता है। तो ज्यादा एफिशिएंसी कहाँ आएगी, जहां सिर्फ हाथ और दिमाग लग रहा है, कि जहां दिल भी लग रहा है साथ में, है ना। हाथ और दिमाग तो वहां भी लगाना ही है उसको, लेकिन वहां दिल भी साथ में ऐड हो गया। तो फोर्स टू पावर इज नॉट अ टेक्निक, इट इज एन अवेकनिंग अवेयरनेस। आप उसके अंदर वो जागृति ला रहे हैं कि आपके अंदर भी बहुत खजाना है, निकालो उसको, बताओ मुझे। फिर टेकिंग की जगह गिविंग, जो हमने अभी एक्टिविटी में भी किया। तो हार्ड पावर क्या कहती है, बिलीव करती है बस जो मिल जाए, इसका समय मुझे मिल जाए, मुझे उसकी रिस्पेक्ट भी चाहिए, इसका काम भी होना चाहिए टाइम पर, सब कुछ मुझे चाहिए। लेकिन गिविंग क्या सोचता है कि इस कार्य के जरिए इसको क्या उन्नति मिल रही है, ताकि ये अगली बार फिर मेरे साथ आए, फिर मेरे लिए आए, क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ काम करके उसको फायदा होने वाला है, तो वो एक बार नहीं हर बार आएगा। फिर टेकिंग इज टेंडेंसी टू टेक, इसका मतलब ही है कि अंदर कुछ हमारे खालीपन है जिसको भरने के लिए मैं दूसरों से ले रही हूं। तो दूसरों से कुछ मांगना, बाबा तो वैसे भी कहते हैं मांगने से मरना भला। दूसरा स्लोगन क्या देते हैं, ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। हमें लोगों से कुछ नहीं चाहिए, यही बात आप उनको उनकी भाषा में बताएं कि अगर आपके अंदर लेने की मंशा है, मतलब अंदर आपके कोई खालीपन है जो आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन दूसरों को महसूस हो जाएगा, और जब उनको आप में खालीपन दिखाई देगा तो वो आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे कम करेंगे, कम करेंगे। तो लव ऑफ गिविंग एंड गिविंग विद लव, ये हमें अंदर से भी भरता है और दूसरों को भी भरता है। लव ऑफ गिविंग, मुझे देने में बहुत खुशी मिलती है और मैं खुशी खुशी देती हूं। गिविंग विद लव, गिविंग विद हैप्पीनेस, गिविंग विद जॉय। तो हमेशा यही वृत्ति रखना कि इससे मुझे क्या मिलता है। कुछ लोगों की वृत्ति ऐसी होती है, जैसे ही कोई व्यक्ति सामने आता है उनके लिए हर व्यक्ति अपॉर्चुनिटी है, इससे क्या ले लूं। ऐसे व्यक्ति थोड़े समय तक तो आपको लगता है सक्सेसफुल दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद उनके पास कोई नहीं बचता, क्योंकि जिससे जो लेना था वो ले लिया। तो जब सामने वाले को लगता है कि इसने मुझे पूरा खाली कर दिया, मुझे कुछ मिला नहीं, तो वो फिर लंबे समय तक वो संबंध नहीं निभा पाते। तो हम सबके पास देने के लिए कुछ ना कुछ है। हम ये ना सोचे कि हम दे ही क्या सकते हैं, हम कर ही क्या सकते हैं, हम तो छोटे हैं, हम तो अभी आए, हम तो अभी समर्पित हुए, वो बड़े हैं उनको देना चाहिए। नहीं, बड़े के पास भी देने के लिए बहुत कुछ है, छोटों के पास भी देने के लिए बहुत कुछ है। और शिफ्ट फ्रॉम कंडेमनेशन टू कंपैशन। कंडेमनेशन किसको कहते हैं? कंडेम करना मतलब सजा देना, पनिश करना। कोई चीज किसी से नहीं हो पाई तो उसको पनिश करना, तो इसका नतीजा क्या होगा? डेफिनेटली लोग आपसे दूर भागेंगे। आपको देखते ही उनके मन में कौन सी फीलिंग्स आएंगी, कौन सी वाइब्रेशंस निकलेंगी। और कंपैशन मतलब सद्भावना। तो कंपैशन हैज नो चांस ऑफ एंटरिंग अवर कंपैशन हैज नो चांस ऑफ एंटरिंग अवर कॉन्शियसनेस जब तक हमारे अंदर दूसरे को इसने ऐसा किया ना, इसके साथ तो ये होना ही चाहिए था, ये बीमारी आई ना, इसी का कर्म भोग है, इसके कर्म। ये संकल्प भी, जो बाबा कहते हैं ना कि ब्राह्मणों के संकल्प भी दूसरे को श्राप दे देते हैं। हमारे इन्हीं शब्दों का तो गायन है ना, एक मीठा वचन शुभ बोल, हाँ ये हो जाएगा, आप कर लोगे, किसी के लिए वरदान बन सकता है। और हमारा ये संकल्प, इसके साथ तो ये होना ही चाहिए था, इसने ऐसा किया ना, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ। तो ये संकल्प भी हमारा दूसरे को सजा देने वाला है। अगर हमारे वाइब्रेशंस ऐसे हैं, और एक के प्रति तो फिर होंगे नहीं, अगर हमारे अंदर ये संकल्प है तो दो तीन के प्रति तो निकलेगा। तो हम यहां अगर हम सजा देने वाले हैं तो सत्युग में कौन बनेंगे? वही संस्कार तो लेकर के जाएंगे ना। तो सत्युग में तो कोई सजा देता नहीं है, लेकिन सत्युग में क्या होता है? कौन सा पद होगा? अभी कोई बोलना नहीं चाहेगा ना? वो कौन सा पद होगा? तो वो संस्कार हम अपने अंदर ना रखें। तो whenever we condemn, जब भी हम किसी के प्रति ये सोचते हैं कि इसका गलत हो जाए, इसको सजा मिलनी चाहिए, not only do we make ourselves peaceless, अपनी तो शांति हम खोते ही हैं, है ना, लेकिन और अपने आप को भी हम अपसेट तो करते ही हैं, क्योंकि अगर मैंने ये सोचा इसके साथ में ये होना चाहिए और वो नहीं हुआ, तो और अंदर से हम कुड़ते रहेंगे। तो ये अपने आप को अशांत करना और दुख देना है। और सॉफ्ट पावर कंपैशन की क्या करती है? वो एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग से उपजती है। तो हम जब दूसरे को करते हैं, देखा, हम दूसरे को करते, देख लो मैंने ये कहा था, यही हुआ, मेरी तरह से काम करो, नहीं तो यही होगा, तो हम अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। अपने आप को जो दूसरे ऑप्शंस मिल रहे हैं वो हम नहीं देते। तो इन शॉर्ट, कंपैशन इसका मतलब दूसरे को कंफर्ट देने का पैशन। इसमें अपने आप शुभ भावना समाई हुई है, सद्भावना में शुभ भावना अपने आप समाई हुई है। फिर पोजिशनल पावर और रिलेशनल पावर। पोजिशनल पावर मतलब आप उस पोजिशन पे हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, लोगों की जी हुजूरी भी मिल रही है, लोगों की रिस्पेक्ट भी मिल रही है, लेकिन जैसे ही आप उस पोजिशन से हटे, आपको कोई चाय भी नहीं पूछेगा, तो हमें रिस्पेक्ट सिर्फ तब तक चाहिए जब तक हम सीट पर हैं? नहीं ना, उल्टा जिस समय हम लाचार हैं, सीट पर नहीं है, तब ज्यादा हमें लोगों का साथ चाहिए होता है। तो हमने रिश्ते कितने कमाए, आपने इज्जत कितनी कमाई, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने रिश्तों की कॉस्ट पर इज्जत कमाई है तो वो इज्जत आपके साथ ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिश्ते कमाना। क्योंकि जहां रिश्ते कमा रहे हैं वहां रिस्पेक्ट अपने आप कमा रहे हैं। इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं बहनों के पास, हम दे सकते हैं ना? तो इसमें हमने वही बातें बताई हैं। और शिफ्ट फ्रॉम बिलीफ टू एक्सपीरियंस। बिलीफ का मतलब जो हमने सुबह देखा ना, कि मैं ये सोचती हूं, मैं ये मानती हूं। और दूसरा क्या है? अनुभव करके देखो कि जो मैं मानती हूं वो सही है या नहीं। तो ज्यादा बड़ी अथॉरिटी किसकी है? ज्यादा बड़ी अथॉरिटी किसकी है? अनुभवों की अथॉरिटी। ज्ञान की अथॉरिटी भी है, लेकिन वहां कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी से ज्यादा अनुभव। ज्ञान भी क्या है? ज्ञान का मतलब भी तो यही है ना, अनुभव। कोई कुक्कड़ ज्ञान तो नहीं है कि रट लिया, वैसा वाला पंडित तो नहीं बनना है ना। तो इसलिए बिलीफ कि बस मैंने ये मान लिया यही सही है, लेकिन अनुभव करके देखें, वही सब इसमें बातें हैं, डिटेल्स हैं। और शिफ्ट है सर्वाइवल से सर्विस। मुझे सर्वाइव करना है इसलिए मुझे ये काम करना है। अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं कंपटीशन में सर्वाइव नहीं करूंगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मैं आउट हो जाऊंगा। तो अपने आप को रेस में बनाए रखने के लिए मात्र कुछ ना करें, लेकिन जो हम कर रहे हैं उससे किसी की सेवा हो रही है, किसी को सुख मिल रहा है, वो देखें। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उसका नतीजा यह है कि आज दुनिया में हर जगह लड़ाई झगड़े हैं, क्योंकि अपने आप को बनाए रखने के लिए दूसरे को हटाओ, सर्वाइव करने के लिए लोग लगे हुए हैं। लेकिन सेवा करने वाला वो अपने आप बना रहता है, क्योंकि वो सुख दे रहा है लोगों को। कोई चाहेगा, आपके आसपास वाले ही नहीं चाहेंगे कि आप कहीं चले जाएं, क्योंकि उनको आपसे सुख मिल रहा है। आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा वो लोग करेंगे, ये कहीं ना जाएं। और अगर आप सर्वाइवल मोड में हैं, मतलब आप सबसे झगड़ रहे हैं, अपने आप को बनाए रखने के लिए आप हर एक को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग क्या चाहेंगे, कब जाएंगे यहां से। और अगर आप सेवा कर रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे, ये कभी ना जाए, ये यहीं रहे। इसलिए सेवा में ही त्याग है और त्याग से ही भाग्य है। तो कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं? तो पहली है कन्विंसिंग विद लव, जो हमने एक्टिविटी में भी किया, प्यार से अपनी बात करवाना, दूसरे को एक्सेप्ट करना, जो अभी तक हमने देखा उसका रिकैप। अब दूसरों को एक्सेप्ट करना, लिसनिंग, लिसनिंग स्किल्स, दूसरे की बात सुनना, टेल नहीं, आस्किंग, क्या आप करेंगे, क्यों नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है, कहां परेशानी है, सुने। और जब सुने तो पूरा मन लगा करके सुने। उसके ऊपर ये वीडियो भी है, ये आपको हेल्प करेगी वो बात समझाने में, ये आपको मिल जाएगी वीडियो। बहुत है मटेरियल, तो वीडियोस एग्जांपल्स तो बहुत हैं, एक घंटा तो काफी नहीं है ट्रेनिंग में कोई भी टॉपिक के लिए। तो ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, मेन बात यह है कि क्या बताना है वो हमको समझ में आए। फिर अप्रिशिएट करना, और अप्रिशिएट करने का भी तरीका होता है। एक होता है आपको खाना बना के दिया, आप खाना खा रहे हैं, सब्जी बड़ी अच्छी है, रोज क्यों नहीं बना सकते ऐसी, ये सही तरीका है अप्रिसिएशन का? मतलब आपने ये तो कह दिया कि आज आपने अच्छी बनाई है, लेकिन ये भी कह दिया कि आप रोज अच्छी नहीं बनाते, तो ये अप्रिसिएशन की कला नहीं है ना? कोई आपसे पूछे कैसा लगा सेशन, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, क्या अच्छा लगा। तो जब आप अप्रिशिएट करते हैं, यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि आपको मैं अप्रिशिएट कर रही हूं, आप में क्या अच्छा लगा मुझे, ताकि सामने वाले को पता चले मेरी इस सब चीजों के पीछे ये गुण प्रमुख था, ताकि वो अपने उस गुण को और जल दे सके, उसको मेंटेन कर सके। ऐसे अच्छा कह देने का मतलब बाबा जी ना कि सब ज्ञान को सुन के अच्छा अच्छा कहेंगे, लेकिन अच्छा बनने की कोई गुण नहीं उठाया उन्होंने, बस अच्छा लगा कन रस। तो हम जब किसी को अप्रिशिएट करें तो स्पेसिफिक, हमें आपके अंदर ये गुण अच्छा लगता है, ताकि उसको पता चले कि हम उसके किस गुण की वैल्यू करते हैं, और वो उस गुण को लगाएगा, हर बार काम में लगाएगा, क्योंकि उसको पता है हमें उसके अंदर ये गुण दिखाई दे रहा है। टॉलरेंस, ये भी सॉफ्ट स्किल है ना। दूसरे व्यक्ति जब तक ना बदले, हमने तो सॉफ्ट स्किल धारण कर ली, सामने वाला तो अभी भी हार्ड स्किल वाला ही आ रहा है ना, तो उसकी हार्ड स्किल्स को देख करके हमें फिर से हार्ड स्किल वाले ट्रैक पर नहीं आना, तो टॉलरेट करना है। तो सब बहने इन सब गुणों के ऊपर हम अच्छे से बता सकते हैं अपने तरीके से ना, एडजस्टमेंट ना, समाने की शक्ति, कोऑपरेशन ना, इसके ऊपर भी वीडियोस हैं, वो आपको मिल जाएगी, सहयोग की शक्ति। तो ये सारी शक्तियां कैसे काम में आती हैं, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, इन्फ्लुएंस करना, शेयर करना, अपने गुण का दान देना। गुणों का दान हम कैसे दे सकते हैं, संकल्पों से, वाइब्रेशन से, करके उसको कर्म में ला करके दिखा करके हम गुणों का दान दे सकते हैं। डेलीगेशन, ये भी सॉफ्ट स्किल है, सब कुछ हम ही कर लें, दूसरा कोई कुछ ना करे, उनको भी आगे बढ़ाना है तो उनको भी कुछ काम, कुछ जिम्मेवारी सौंपनी है। डेलीगेशन, धैर्यता, कोई भी परिवर्तन तुरंत अभी नहीं करेगा, इसलिए धैर्यता। अपने साथ भी धैर्यता, हम कई बार अपने साथ भी धैर्यता नहीं रखते हैं। दिल शिकस्त होने का मतलब ही है धैर्यता की कमी, कि हमने बहुत जल्दी मान लिया कि हम नहीं बदल सकते, हम दिल शिकस्त हो गए, ये हमसे नहीं हो सकता। दिल शिकस्त होने वाली आत्मा या दूसरों के साथ इम्पेशेंस, दोनों का ही आंसर है धैर्यता, पेशेंस। और कम्युनिकेशन स्किल्स, पीछे भी बताया गया है इसके बारे में, तो इसलिए इस पर भी हमें जानकारी मिल चुकी है। तो इस प्रकार से हम उनको पहले तो डिफरेंस बता सकते हैं, उनको खुद रियलाइज कराएं कि किस चीज में हमारा और दूसरों को फायदा ज्यादा है, और उसके बाद में कुछ मूल बातों को उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? ये सारे जो बीच बीच में वीडियोस आए थे आपको दिखाए नहीं, लेकिन ये आपको मिल जाएंगे, तो आप समय ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि समय हो चुका है, और वैसे भी लास्ट सेशन तक आते आते सबके थके तो नहीं है, कोई थके तो नहीं है, बहुत थक गए नहीं? अच्छा, थैंक यू। तो अभी हम दो मिनट थोड़ा सा कमेंट्री के साथ, हम इस टॉपिक पे जब कराएं तो कैसे हम इसको योग से जोड़ सकते हैं, ज्ञान से कमेंट्री में जोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेशन कराने का मतलब है उनको मूल से जोड़ना। ये सब बातें बताना बड़ी बात नहीं है, इसमें डायरेक्टली तो आत्मा परमात्मा नहीं आया, लेकिन आत्मा के गुण और शक्तियों की हमने बात की, तो उसका हम उनको अनुभव करा सकते हैं। ओम शांति। तन और मन की स्थिरता के साथ, जैसे इन आंखों से हम बाहर दूसरों के अंदर गुण या कमजोरियां बहुत जल्दी देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि उनकी मंशा क्या है, ऐसे अपने मन के नेत्र से अंदर झांके, मैं इस संसार के अंदर यूनिक हूं, विशेष हूं, मुझ जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं, अपने भीतर झांक कर। तीन ऐसी विशेषताएं अपनी देखें जो आपको इस संसार में यूनिक बनाती है, सबसे विशेष। बाहरी रूप से तो हम सब अलग हैं ही, लेकिन अंदर एक छोटा सा सितारा जो मस्तक के बीचों बीच चमक रहा है, सतोगुणी सितारा। उसकी विशेषता को देखें। जैसे स्थूल सितारा अंधकार में भी प्रकाश कर देता है, ऐसे मैं ये चमकता हुआ गुण रूपी सितारा हूं। मैं जहां भी हूं वहां अपनी इस गुणों की चमक को चारों ओर फैला रहा हूं। कोई कितना भी अपने मन के दरवाजे को बंद कर ले, लेकिन ये प्रकाश गुणों का, शक्तियों का, उनके अंतर मन की दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। अनुभव करें, अपने सामने जिन आत्माओं को आप अपने जीवन से कुछ संदेश देना चाहते हैं, अपने मन की बात उन्हें कहना चाहते हैं, उन्हें अपने मन में इमर्ज करें, महसूस करें। मुझ जगमगाते हुए सितारे से ये गुणों का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश उनके मन को प्रकाशित कर रहा है। उनके मन में भी वही भाव उत्पन्न कर रहा है जो मेरे मन में है। सब मेरे सहयोगी और मुझे भी सबको ये सहयोग देना है। को यही गुण देने वाला गुणों का सागर एक है। जो गुण उसने मुझ में भरे, ऐसे ही कई विशेष गुण उसने सबके अंदर भरे हैं। दूसरों में क्या गुण भरा है ये मुझे समझना है। इसके लिए मुझे अपने आप को मौका देना है दूसरों को समझने का। उनसे गुण ग्रहण करने का। इस निश्चय के साथ फिर एक बार अपने कर्म क्षेत्र पर इस सद्भावना के साथ लौटें। अपनी विशेषता की स्मृति और दूसरों से गुण ग्रहण करने की इच्छा, ये दोनों ही मेरे अंदर
जागृत है।